بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں حضرت بندگی میں سیدنا شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف الویات. اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اس کو کچھ صرف خالص کتاب پڑھنی ہے تو یہ کتاب جو ہے ہارڈ کاپی اویلیبل بھی ہے, اور جو ہے اس کی آن لائن بھی جو ہے کاپیز اویلیبل ہے اردو میں, انگلش میں. ہم یہاں پہ جو ہے کتاب پڑھی بھی جاتی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی جو ہے. اس بات کا خیال رکھیں. پچھلی نشست میں دو نشستیں ہوئی ہیں کتاب المعیار کے اوپر. پچھلی نشست میں جہاں پہ جو ہے ذکر اللہ کے اوپر اہم گفتگو ہو رہی تھی, بندے کے سمجھ آیا تو مجھے صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی وہ آئے سورہ کہف کی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے بس ربکا اذا نسیتا, اور ذکر کر تیرے رب کا جب تو بھول جائے. اسے ہمیں بتایا کہ جو ہے جب آپ خود کو بھولیں, یعنی اپنے وجود کو جب بھول جائیں گے, تب جو ہے اللہ کے پاس اللہ کا ذکر ہوگا. تو ذکر کے لیے شرط یہ ہے اللہ کے پاس ذکر ہونے کے لیے کہ آپ جو ہے خود کو بھولنا. یہ جو ہے ایک اہم نقطہ تھا جو پچھلی نشست میں جو ہے پڑھا گیا. پھر جو لا الہ الا اللہ کے ذکر کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی, اور پھر اس کے بعد ایک اور ایک اہم نقطہ تھا جس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی, وہ تھی کہ حلال چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے آزمانے کے واسطے ہوتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ چیزیں حلال بھی کرتا ہے وہ جو ہے اپنے بندوں کو اسے آزماتا ہے. پھر صحابہ مہدی کے اوپر جو چند الزامات اس وقت جو لگائے گئے تھے کہ پورا کلمہ نہیں پڑھتے, کا سب کو جو ہے حرام جانتے ہیں, قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں, اس کے اوپر جو گفتگو بھی, اور وہی گفتگو جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کے اوپر, اور جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. آگے پڑھ رہا ہوں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے. یہاں پہ جو ہے روزی کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے. رسول وسلم نے فرمایا, مدنی میں رسول لکھ رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رضا کو طلب کر, رزق کو طلب مت کر, یعنی رضا جو رزق کا دینے والا ہے اس کو طلب کر, رزق کو جو ہے طلب مت کر, کیونکہ رزق تیرا طالب ہے اور رضا تیرا مطلوب ہے. رزق جو ہے تیرا طالب ہے, وہ جو ہے وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے, تجھے پیچھے پیچھے جو ہے وہ آ رہا ہے, اور رضا یعنی جو دینے والا ہے وہ اللہ ہے, وہ جو ہے تمہارا مطلوب ہونا چاہیے, تم جو ہے اس کی طلب میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد مبارک ہے جس کی خودی میں کہ میرے بندے یہ تمام جہاں جو ہے تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے, تو ہر چیز جو بنائی گئی ہے وہ بندگان خدا کے واسطے ہیں, اور ہم جو بنائے گئے ہیں وہ خدا کے واسطے ہیں. آگے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ پس کلام خدا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ تمام مومنوں پر اللہ کی طلب فرض ہے. ہر مومن کے اوپر ایمان لانے کے اوپر اللہ کی طلب فرض ہے. دیکھیے جب یہ لفظ فرض کا استعمال کیا گیا ہے, آپ کے اوپر نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, ذکر اللہ فرض ہے, اللہ کی طلب فرض ہے اسی طرح. اسی لیے امام مہدی موت السلام فرماتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت پر اللہ کی دیدار کی طلب فرض ہے. مطلب طلب کرنا, جستجو کرنا, یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح عین آپ کے اوپر نماز فرض ہے, اسی طرح اللہ کی طلب میں رہنا بھی جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے. تو بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ پس کلام خدا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ تمام مومنوں پر اللہ کی طلب فرض ہے, رزق کی طلب فرض نہیں, کیونکہ ان کو پیدا کرنے میں اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کریں, کیونکہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے میری معرفت جو ہے میرے بندوں کو جو ہے حاصل ہو اور وہ میری عبادت کرے. چنانچہ خدا پاک اور برتر نے فرمایا ہے, سورہ زاریات کی مشہور آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جو جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے تو بس اس لیے کہ میری عبادت کریں. پس جو شخص کے اللہ کی بندگی کو اور اللہ کی معرفت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے اور زندگانی کی طلب کو سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا نام رکھیں گے اور اس کو کس قبیلے سے پکاریں گے؟ بالضرور وہ انہیں لوگوں میں شمار ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے سورہ ہجر میں کہ اور کہ چھوڑ دے ان کو کہ کھا لے اور نفع اٹھا لے اور ان کو غافل کیے ہیں, امید پھر آگے ان کو معلوم ہو ہی جائے گا. جن لوگوں کے حق میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم ہوتا ہے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو ہے اپنی پیدائش کے مقصد کو جو ہے بھول گئے اور جو اس کو پیچھے ڈال کے جو ہے دنیا زندگی کے پیچھے پڑ چکے ہیں, تو ان کو مخاطب ہوا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مصدق کی بات نہیں ہوئی, جو کوئی جو ہے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول چکا ہے, جو اللہ کے واسطے پیدا ہوا ہے اس کے مقصد کو بھول کر جو ہے دنیا کی زندگی پیچھے پڑا ہوا ہے, ان کے متعلق جو ہے رسول کو حکم ہوا ہے کہ چھوڑ دو کہ جو ہے ان کو کھا لیں اور جو ہے نفع اٹھا لیں, فائدہ اٹھا لیں چند دن کے واسطے, اور ان کو غافل کیے ہیں, امید پھر آگے ان کو معلوم ہو ہی جائے گا. جن لوگوں کے حق میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم ہوتا ہے تو یہ لوگ کہاں, اور اللہ کی معرفت و محبت کہاں؟ क्योंकि ये लोग इरादे को दुनिया से ऐसा वाबस्ता कर लिए हैं और दुनिया को ऐसा मजबूत पकड़ लिए हैं कि हरगिज दुनिया से मुंह नहीं फेरते, यानी खुदा को भूल कर, दुनिया जो है खुदा को भूलना है, खुदा को भूल के जो दुनिया में मजबूर हो चुके हैं कि उसे मुंह नहीं फेरते और अल्लाह की तरफ रुख नहीं करते और अल्लाह की आयतों में हरगिज नज़र नहीं करती, क्योंकि ये लोग दुनिया के तालिब, जो लोगों से मुराद है ये लोग दुनिया के तालिब, अल्लाह के दीदार की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते। जैसा कि खुदा ताला का इरशाद मुबारक है सूरह यूनुस में कि जिन लोगों को हमारे दीदार की तवक्को नहीं और खुश हुए दुनिया की ज़िंदगी पर और उसी पर चैन पकड़ा, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं ऐसों का ठिकाना आग, उन करतूतों के बदले लोग कमाते थे। देखिए कोई मामूली बात नहीं है, साफ साफ जो है हुक्म हो रहा है अल्लाह ताला का कि जिनको जो है हमारे दीदार की तवक्को नहीं है, जो दुनिया के तालिब हैं और खुश हुए हैं दुनिया की ज़िंदगी पर, जो है इत्मीनान के साथ चैन पकड़ा हुआ है अल्लाह की दीदार के बगैर और उसी पर चैन पकड़ा, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, अल्लाह की निशानियों से गाफिल हैं, ऐसों का ठिकाना आग, उन करतूतों के बदले जो कमाते थे। बस जो शख्स ऐसे लोगों के सामने अल्लाह के दीदार का दावा करता है, अब देखिए वहाँ पर गैर मैदवी जो थे पूरे पक्के जो है वो दुनिया के ताले हो चुके थे, इसीलिए मौलाना महद इस्लाम जब आए तो महद इस्लाम ने जो है जो कुरान की आयतें हैं जहाँ पे जो है मन कामा युरिदुल हयात दुनिया वगैरह की बात हो रही है कि जो कोई जो है दुनिया का इरादा करता है उसका मुरीद होता है, महद इस्लाम ने जो है अल्लाह के हुक्म से ऐसों का जो है ठिकाना दोजख बताया, और आपने कहा कि चाहे वो कोई भी हो, कलमा पढ़ने वाला हो या कोई भी हो, अगर जो है वो दुनिया का इरादा रखता है और उसी पर जो है मुसीब है तो उसका ठिकाना जो है दोजख है। तो वहाँ पर यहाँ पर यही बात हो रही है, तो मैं बंदे के मैं लिख रहा है कि बस जो शख्स ऐसे लोगों के सामने, उस वक्त जो है गैर मैदवी जो पूरे दुनिया के मुरीद थे उनके सामने अल्लाह के दीदार का दावा करता है, अब मैदवी जो है अल्लाह के दीदार का दावा करने वाले और अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत की बातें करते हैं, तो ज़रूर ये लोग उससे दुश्मनी और मुखालिफत करेंगे, बल्कि उसको गुमराह और दीवाना कहेंगे, ज़रूर जो है ये लोग उनकी जो है मुखालिफत करेंगे। चुनाचे फुतुहात मक्की में क़िस्से महदी के मुतालिक ये बयान किया है कि जब महदी उनके मजहब के ख़िलाफ़ हुक्म करेगा तो वो लोग उसको यकीनन गुमराह समझेंगे, क्योंकि उनका एतिहाद ये है कि इश्तिहाद का ज़माना ख़त्म हो गया और उनके इमामों के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं पाया जाता जो इश्तिहाद का दर्जा रखता हो, और जो शख्स अहकाम शरीयत के मुआफ़िक अल्लाह की मारिफत का दावा करता है तो उनके पास दीवाना और फासिदुल ख्याल है, वो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती। बस अज़ीज़ जान ले कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा इस कबीले से हैं कि अल्लाह के दीदार और अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत की बातें करते हैं तो बिलज़रूर उलमाए ज़माना इन तालिबान दुनिया उनको गुमराही की तरफ मंसूब करते हैं। मोहम्मद इस्लाम के पास जो है आपके सहाबा आके आपको कहते भी थे कि मीरानी जो है आपको लोग गाली देते, तो इस्लाम ने फरमाया कि भाइयों अगर कोई किसी की महबूबा को गाली देगा तो ज़रूर जो है पलटा के गाली देगा, तो मैं इस्लाम जो है दुनिया को जो है गाली देती थी, उस वक्त जो है दुनिया उनकी महबूबा हो चुकी थी, इस्लाम ने इसलिए सबसे पहला जो फ़र्ज़ था वो तरके दुनिया लाया, दुनिया के ऊपर जो है आप जो है सख्त मजम्मत की, तो इसीलिए जो है तमाम के तमाम उस वक्त के जो उलमा थे उनका जो है महबर तोड़ रहा था, सारे तालिबान दुनिया हुए हुए थे, वो लोग जो है इसीलिए मामला में इस्लाम की जो है मुखालिफत किए हैं और जो है इस्लाम की तरफ जो है मैदवी की तरफ जो है गुमराही को मंसूख किया। तो इसीलिए देखिए बंदगी में लिख रहे हैं कि अज़ीज़ जान ले कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा इस कबीले से हैं कि अल्लाह के दीदार और अल्लाह की मारिफत व मोहब्बत की बातें करते हैं तो बिलज़रूर उलमाए ज़माना उनको गुमराही की तरफ मंसूब करते हैं और अपनी जहालत की वजह से उनसे दुश्मनी करते हैं। चुनाचे ये मशहूर है कि आदमी दुश्मनी मोल लेता है अपनी जहालत की वजह से, और जाहिल आदमी अगर अल्लाह के दीदार से इनकार करता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि बशर का इल्म ही खुद हिजाब होता है, तो फिर जहल क्यों हिजाब ना होगा। चुनाचे हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल-इल्म हिजाबुल्लाह अकबर, यानी इल्म अल्लाह का बड़ा हिजाब है, और ये हिजाब दूर नहीं होता जब तक कि बशरियत की कैद से पूरी तरह से ना निकल जाए। चुनाचे एक आरिफ कहता है, तू कहता है इल्म और अकल से खुदा को तलाश करूँगा, तू नादीदा शख्स है तुझको क्या कहूँ, जहाँ इस दम की रसाई है वहाँ इल्म व अकल हिजाब आज़म है, ऐसा इल्म तलब कर जो तेरे साथ रहे, वो दम तलब कर जो तुझको तेरी खुदी से नजात दे, जब तक तू इल्म फरीज़ा यानी इल्म मारिफत नहीं पढ़ेगा तहकीक अल्लाह की सिफात को नहीं जाने। बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला ने यहाँ पे एक अहम मुद्दा बयान किया है जिससे आदमी जो है खुदा तआला तक पहुँचता है। ये जो है गोल्डन वर्सेस देखिए पंद्रहवीं रसम जो फरमा रहे हैं, यहाँ से आपके सामने जो पढ़ रहा हूँ कि यानी आदमी जब तक बशरियत की कैद से ना निकल जाए, तीन बातें, आदमी जब तक बशरियत की कैद से ना निकल जाए और मुतलक ना हो जाए, आज़ाद ना हो जाए और अल्लाह के अखलाक पैदा करो की शान हासिल ना करे, रसूल की हदीस है कि अल्लाह के अखलाक पैदा करो और अल्लाह के अखलाक पैदा करो की शान हासिल ना करे, अल्लाह की मारिफत के लायक ना होगा। उसे जो है कैद बशरियत से निकलना है, उसे मुतलक होना है, बिल्कुल आज़ाद होना है और अल्लाह के अखलाक उसको जो है पैदा करना है, ये तीन चीज़ें। अब देखिए नॉर्मल तौर पे जो बशरियत कहते हैं, आदमी इंसान बशर, हम समझते हैं बशरियत जो है खाना पीना सोना जानना, ये नॉर्मल जो है बशरियत की बात आते हैं, लेकिन वहाँ पर इसकी तफसील ये बताई गई है, मुख्तसर कह रहा हूँ कि बशरियत आप जब तक जो है खुदा को भूले रहें, खुदा को जो भूलने की जो सिफत हमारे अंदर है वो बशरियत, हम भूलते रहते हैं, अब याद करने की कोशिश करते आते हैं, आप भूलते रहते हैं। अब आपका काम है बशरियत से जो निकलना है, ये तमाम जो चीज़ें आपको हासिल होगी उसका सीधा सीधा फॉर्मूला यही कि है जो है आप अल्लाह ताला की याद में अल्लाह के जिक्र में जितनी मदावत करेंगे, आप जितनी कोशिश करेंगे उतनी जो है अल्लाह की याद आपके अंदर कायम होगी। और जब आप अल्लाह को भूलने की सिफत, अल्लाह को भूलने की सिफत जब आपसे निकल जाएगी, आप बशरियत से आ जाओ। अल्लाह को भूलने की सिफत हमारे अंदर से निकलना, जब तक आप अल्लाह को भूल रहे बशर, आप वो बशरियत में हम जाते रहते हैं, उसके अंदर फंसते रहते हैं क्योंकि हम उस आलम ही में हैं। अब आपको उसके वास्ते बड़ी कड़ी मेहनत करना है, कोई आसान बात नहीं है, बड़ी कड़ी मेहनत करना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक कि तुम जो है दो वक्त ना पैदा हो गए आलम मलकूत में दाखिल ना हो गए, एक बार तो जो है यहाँ पर पैदा हो गए, अब यहाँ से फिर आपको मर के जो है आप जो है फिर आपको जो है आपको फिर पैदा होना है, मतलब आपको पूरी तरह ख़त्म होना है, आपको इल्लल्लाह तू है ला इलाहा इल्लल्लाह की जो ज़र्ब लगा रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह तू है तेरे सिवाय कोई नहीं मैं भी नहीं हूँ, जब ज़र्ब लगा रहे हैं ये, तो आपको जो है ये पूरी कोशिश करना है, इतनी आपको मदावत करना है कि आपकी जो आपका सिर्फ ज़ुबान ना जिक्र कर रही है बल्कि आपका सिर्फ दिल नहीं बल्कि आप सरतापा इल्लल्लाह तू ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाना, यानी अल्लाह की याद में इतने महू हो जाना है कि सरापा ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाना, यही हमारे पास की जो है ये तालीम है। तो देखिए यही है कि आप जब जो है बशरियत की कैद से ना निकल जाएंगे और मुतलक ना हो जाएंगे, मुतलक जो है अल्लाह है, हम मुकैद हैं, आपको अल्लाह की तरह जो है मुतलक होना, अल्लाह की ज़ात में जो है फना होना है, तो अल्लाह की ज़ात में आप जब फना होंगे तो आप मुतलक हो जाएंगे। तो यानी आदमी जब तक बशरियत की कैद से ना निकल जाए और मुतलक ना हो जाए और अल्लाह के अखलाक पैदा करो की शान हासिल ना करे, अल्लाह की मारिफत के लायक ना होगा। चुनाचे एक आरिफ कहता है, मसनवी का तर्जुमा है, कि अपनी ज़ात से कोई शख्स खुदा को ना पहचान सका उसकी ज़ात को उसी से पहचान सकते हैं, नफ्स अकल और हवास के बावजूद खुदा शनास कैसे हो सकते हैं। नफ्स रखते हुए, अकल रखते हुए या हवास रखते हुए आप जो है खुदा को पहचानने वाले नहीं हो सकते। खुदा को पहचानने के लिए जो है खुदा ही की आँखें चाहिए, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शर्त लगा दी कि खुदा हो सो खुदा को देखे, यानी जो खुदा होता है वो खुदा को देखता है, मतलब जो खुदा की ज़ात में मुकम्मिल बना हो जाता है, मुकम्मिल बना हो जाता है वो अल्लाह को अल्लाह को देखता है। इसीलिए मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह मुफ्ती अल्लाह मीशवी ईसुखन अकस वल्लाह मीशवी, यानी अल्लाह अल्लाह कहते अल्लाह हो जाता है, ये बात जो है हक़ खुदा की कसम, ये बात जो है सच है। तो अल्लाह अल्लाह कहते आप अल्लाह की ज़ात में मुकम्मिल बना हो जाते हैं, ये कोई देखिए मुशरिकाना या कुफिया कलमा नहीं, ये बात समझाई जा रही है कि तुमको जो है अपनी जगह पे से हटना है, मतलब अपना वजूद बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म करना है, तब जो है जब आपको जो है अल्लाह का दीदार हासिल होगा। ये पानी आँखें, ये मेरी आँखें जो खुदी के साथ में जो जी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये अंदर जो एहसास मौजूद है ये जो है हरगिज़ अल्लाह को नहीं देख सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि बंदगी में इसलिए ये मसनवी यहाँ पे लिख रहे हैं कि अपनी ज़ात से कोई शख्स खुदा को ना पहचान सका उसकी ज़ात को उसी से पहचान सकते हैं, अल्लाह ही से पहचान सकते हैं। आगे इसी के ऊपर गुफ्तगू है, नफ्स अकल और हवास के बावजूद खुदा शनास कैसे हो सकते हैं। आगे बंदगी में लिख रहे हैं कि बस इन आरिफों के अकवाल से मालूम हुआ कि जो शख्स खुदा के दीदार और खुदा की मारिफत को तलब करे तो उसको चाहिए कि खुदी से बाहर आए और मरने से पहले मरो का रुतबा हासिल करे। मशहूर हदीस है कि मुँह तो खबर अंतर हूँ तू, मरने से पहले मर जाओ, इन्हें इस तरह रहना है जिस तरह जो है चलता फिरता मुर्दा है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है सवाल किया गया कि जो है आप दीदार की बात करते हैं, खुदा का दीदार तो जो है मरने के बाद होगा, तो मैं सामने फरमाया कि बंदा कब कहता है कि जीते जी खुदा का दीदार होगा, तुमने हदीस रसूल नहीं पढ़ी, मुँह तो खबर अंतर हूँ तू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। वो मौत आने से पहले मौत इसरार या आपको मौत मानवी वाकई में अंदर से आपकी खुद ही ख़त्म हो जाना है बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ और अल्लाह ही अल्लाह रहना, तब जो अल्लाह का इजहार हासिल होगा। और ये कोई मामूली बात नहीं, देखिए आप ख़त्म होना, मैं ख़त्म होना, ये कोई मामूली बात नहीं, उसके वास्ते पूरे फ़राइज़ विलायत, उसी के वास्ते जो है पूरे फ़राइज़ विलायत है, आपको तमाम जो उस पर अमल करेंगे तो खुदी की जड़ें जो अंदर मजबूती के साथ जो फैली हुई हैं उस वक्त जो है टूटेगी, जब आपको जो है कामिल की सोहबत नसीब होगी, जब आपको जो है खिलवत नसीब होगी, जब आप जो है अपने वतन से हिजरत करेंगे, तमाम ताल्लुकात जब तोड़ेंगे, जब जिक्र दवाम करेंगे, महू हो जाएंगे अल्लाह के जिक्र में, तब जो है अल्लाह ताला जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी मौत के सत्य में जो उसकी दीदार से मुशर्रफ करेगा। इसीलिए देखिए बंदगी में फरमा रहे हैं, बस इन आरिफों के अफवाज से मालूम हुआ कि जो शख्स, साफ साफ बात है देखिए ये हमारे वास्ते शर्त है कि जो शख्स खुदा के दीदार और खुदा की मारिफत यानी उसकी पहचान को तलब करे तो उसको चाहिए कि खुदी से बाहर आए और मरने से पहले मरो का रुतबा हासिल करे। ये कोई मामूली बात नहीं है। आगे कह रहे हैं कि चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया है कि तुम में से कोई मरने तक अपने रब को नहीं देखेगा। ये बात समझने की नहीं है अभी, हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में से कोई मरने तक अपने रब को नहीं देखेगा, अगर मर गया तो देखेगा, अगर मर गया तो देख लेगा, जब तक नहीं मरेंगे आप नहीं देखेंगे, जीते जी अगर मर जाएंगे तो आप देखेंगे, आप जो है ज़िंदगी में रहते हुए आप मर जाएंगे बिल्कुल मुर्दे के मानिंद हो जाएंगे तो आप देख लेंगे, कैसा देखा दूसरे लोगों ने वो बंदे की मैंने आगे कहा है। और इजमाए मशायखीन का जिक्र जो किताब तारीफ में लाया है कि अल्लाह दुनिया में नहीं देखा जाता और कोई मखलूक उसको नहीं देखती, इस कौल को बाज नादान लोग दीदार के खिलाफ में दलील ठहराते हैं। ये कौल जो किताब में लाया गया है जो दीदार का इनकार करने वाले उस कौल को जो है अपनी तारीफ में लिखाते थे, तो नहीं कह रहे हैं कि इजमाए मशायखीन का जिक्र जो किताब तारीफ में लाया है कि अल्लाह दुनिया में नहीं देखा जाता और कोई मखलूक उसको नहीं देखती, इस कौल को बाज नादान लोग दीदार के खिलाफ में दलील ठहराते हैं और नहीं जानते कि ये कौल तालिबान हक की तरगीब के लिए है, उनको जो है बल्कि सिखाया जा रहा है कि साफ साफ हम कह रहे हैं कि अल्लाह दुनिया में नहीं देखा जाता और कोई मखलूक उसको नहीं देखती, मतलब दुनिया से निकलना है तो उसको देख सकते, ये तरगीब दी जा रही है, उसे जो है सिखाया जा रहा है, और नहीं जानते कि ये कौल तालिबान हक की तरगीब के लिए है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स खुदा को तलब करे और खुदा के दीदार का तालिब हो तो उसको चाहिए कि दुनिया और अहले दुनिया से हट जाए, बशरियत की सिफत से निकल जाए और फना का मर्तबा हासिल करे। कहते हैं कि एक शख्स मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में आया और सवाल किया, या रसूलल्लाह दुनिया क्या है? हाँ हुजूर ने फरमाया तेरी दुनिया तेरा नफ्स है, जब तू नफ्स को फना कर देगा तो उसके लिए दुनिया नहीं रहेगी। रसूल ने साफ फरमा दिया, सवाल किया गया रसूलल्लाह से कि या रसूलल्लाह दुनिया क्या है, तो रसूलल्लाह ने फरमाया तेरी दुनिया तेरा नफ्स है, जब तू नफ्स को फना कर देगा तो उसके लिए ना दुनिया रहती है और ना अहले दुनिया, और जब ये हिजाब यानी दुनिया और अहले दुनिया उठा दिए जाएँ तो फिर कोई दूसरी चीज़ दीदार खुदा की माने नहीं, जब दुनिया हट गई अहले दुनिया हट गई तो फिर आपके से कोई दूसरी जो है रुकावट नहीं है। आगे चुनाचे खुदा पाक व बरतर ने फरमाया فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے جہاں پہ اللہ نے صاف فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بندگی میں ذکر ہے کہ چنانچہ خدا پاک و برتر نے فرمایا کہ جسے امید ہو اپنے پروردگار کے دیدار کی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ نے کہا عمل صالح کرو، तो बंदगी में फरमा रहे हैं कि जो जिसको उम्मीद हो अपने परवरदिगार की दीदार की तो चाहिए कि अमल साले करे, ना शरीक करे अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को, जान अजीज के फना और अमले साले की कैफियत से बाज लोग बेखबर हैं और अपनी बेखबरी की वजह से इन अकवाल को रफ़े हिजाब के लिए आए हैं, यानी जो है दीदार नहीं होता कहते हुए जो है इस वास्ते लेके आए हैं। तो बंदगी कह रहे हैं कि ये लोग जो फना और अमले साले की कैफियत से वाकिफ नहीं हैं, बेखबर है, और अपनी बेखबरी की वजह से इन अफवाल को जो रफ़े हिजाब के लिए आए हैं, जो कि असल जो है हिजाबात को हटाने के वास्ते जो है जो ऊपर के बुजुर्गों ने जो है अफवाल पेश किए थे उनको जो है अपनी तारीफ में लाते हैं और नहीं जानते जो तुझे पढ़ाऊँ अजीज के पना और अगले साले की कैफियत से बात दो बेखबर हैं और अपनी बेखबरी की वजह से इन अखबार को जो रफ़े हिजाब के लिए आए हैं, इन हिजाबात को हटाने के लिए आए हैं, उनको दीदार खुदा की नफ़ी पर दलील ठहराते हैं और नहीं जानते कि ये महज खता है। क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहता है कि दुनिया में खुदा का दीदार जायज़ नहीं और आखिरत में जायज़ है, तो वो शख्स खुदा ताला को आजिज़ ठहराता है। क्योंकि अल्लाह ताला पर किसी चीज़ का इतलाक किसी वक्त भी जायज़ होता है तो वो तमाम औकात में जायज़ होता है। यानी ये कोई कहता है कि जो दुनिया में दीदार नहीं हो सकता और आखिरत में हो सकता है, तो माशाल्लाह जो है वो अल्लाह को आजिज़ ठहरा रहा है। बंदगी में फरमा रहे हैं कि खुदा ताला पर किसी चीज़ का इतलाक किसी वक्त भी अगर जायज़ है, यानी अगर वो कभी भी कर सकता है, तो जो है वो हमेशा कर सकता है। यानी अगर जो है उसको दीदार कराना है और जो है अगर उसको आखिरत में दीदार कराना है, तो जो है कभी भी दीदार करा सकता है, क्योंकि खुदा ताला की सिफत है। क्योंकि अल्लाह ताला पर किसी चीज़ का इतलाक किसी वक्त भी जायज़ होता है, तो वो तमाम औकात में जायज़ होता है। क्योंकि अल्लाह ताला का कोई वस्फ हादिस नहीं है, यानी पैदा किया गया नहीं है। और तमाम उलमाए अहले दीन और मशायकीन साहिब यकीन दुनिया में खुदा के दीदार के जायज़ होने पर मुत्तफिक हैं, और अहले सुन्नतुल जमात में से कोई एक भी दुनिया में जवाज़े रुयत में इख्तलाफ नहीं करते। बाज़ लोगों को वुकू में इख्तलाफ है और उनमें से अक्सर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दीदार होने की गवाही देते हैं। सुन्नत जमात का ये मजहब रहा है कि इस दुनिया में जो है अल्लाह का दीदार जायज़ है। इमामाना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के वक्त पे भी जो है बास उस वक्त के सुन्नत जमात के उलमा थे जो औलिया अल्लाह से के सिलसिले ताल्लुक रखने वाले थे, वो भी उस वक्त भी और आज भी गैरों में भी आज भी जो है बास लोग दीदार खुदा के जो है कायल हैं। इमामाना इस्लाम से जो है दीदार खुदा के पर जो बहस होती थी, तो इस्लाम ने एक मतलब पूछा कि आखिर कोई दीदार खुदा का जो है कायल भी है या नहीं, यानी कोई कहता है कि दीदार होता है या नहीं, तो कहा कि हाँ। तो बस इस्लाम ने फरमाया कि बस हाँ, हम जो है देखने वालों को मजहब इख्तियार किए हैं, तुम अंधों का मजहब इख्तियार करो, जो देखते बोल रहे नहीं, हम जो है उनका मजहब इख्तियार किए, तुम जो है जो नहीं देखते उनका मजहब इख्तियार कर लो, तुम जो है अंधों के मजहब पे हो, हम जो है बीनाओं के मजहब पे हैं। और अक्सर जो है जो और मतलब ये लिख रहे हैं कि और उनमें से अक्सर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज में दीदार होने की गवाही देते हैं। चुनाचे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपनी दोनों आंखों से देखा। और नेस साहिब मुकनी ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि क्या तुमको इस बात से ताजुब है कि खिलत इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए हो और कलाम मूसा अलैहि सलाम के लिए हो और दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो दोस्तों को जो है दीदार अता किया गया, इस पर जो है हमारा ईमान है और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ईमान मिला। और आगे लिखे बंद कि और तफसीर रहमानी में आयत हाजा सूरह नज़म की जो आयत है वल्लाह कदराव नज़लत नुफरा, और बेशक देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने खुदा को के बयान में आया है कि यानी देखा अपने रब को जिस वक्त के नुज़ूल हुआ इसके नुज़ूल अव्वल के सिवाय। और तफसीर बेलमी में आयत हाजा जो आयत मुबारक है कि माँ कज़बल फुआद मारा नहीं झूठ मिलाया पैगंबर के दिल ने, इस मामले में जो देखा के बयान में लाया है कि यानी नहीं झुटलाया दिल ने और ना इनकार किया और ना शक किया इसमें जिसको देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुशाहिदा किया बसर से अपने रब का, आंखों से अपने रब का। तो यहाँ पे जो है रसूल की जो है दीदार के बारे में जो जवाब है जो आयत साफ साफ कुरान मजीद में कि अल्लाह कह रहा है कि नहीं झुटलाया उनके दिल ने जिसको उन्होंने जो है देखा। आगे जो है चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या बस झगड़ते हो तुम इससे उस पर जो देखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की ज़ात व सिफात को, बस ना शक करो तुम इसमें ये रुयत नबी की है कि अपने रब को सर की आंखों से देखा रूबरू का देखना और देखा अल्लाह को दूसरी मरतबा। और ख़ुद मुस्तफ़ा सल्लम भी गवाही देते हैं जहाँ के आप सल्लम ने फरमाया कि मैंने शबे मेराज में अपने रब को अच्छी सूरत में देखा, बेहतरीन खूबसूरत में जो है खूबसूरत चेहरा अल्लाह ताला का जो है देखा। उसने फरमाया कि मैंने शबे मेराज में अपने रब को अच्छी सूरत में देखा। और दूसरी जगह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जब जबकि उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपने रब को देखा। साफ साफ यहाँ पे जो हदीस मिलती है अगर कि अबू ज़र ने दायर से पूछा कि क्या आपने अपने रब को देखा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैं उसको देखता हूँ, उसे मैं देखते रहता हूँ। सहाबा रज़ी के अख़वाल भी रुवियत की गवाही देते हैं, यानी दीदार की जो है गवाही देते हैं। चुनाचे उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल लाया गया है, हज़रत उमर रज़ी का देखिए शान क्या शान है, कि लाया कौल लाया गया है कि मैंने नहीं देखा किसी चीज़ को मगर इस हाल में कि देखा मैंने अल्लाह को, इसमें कोई चीज़ मैंने नहीं देखी मगर मैंने जो उसमें अल्लाह को देखा, यानी जहाँ भी नज़र पड़ी दीवार देखी तो जो है उसमें अल्लाह को देखा, आप छत देखा छत पर नज़र पड़ी तो उसमें अल्लाह को देखा, आदमी नज़र पड़ी उसके ऊपर तो जो है अल्लाह को देखा, झाड़ पर नज़र पड़ी तो उसमें अल्लाह को देखा। साहब हज़रत कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा किसी चीज़ को मगर इस हाल में कि देखा मैंने इसमें अल्लाह को इसमें। और अली रज़ी अल्लाह तआला भी फरमाते हैं कि खुदा की कसम नहीं इबादत की मैंने अपने रब की यहाँ तक कि नहीं देखा मैंने उस, अली तो साहब फरमाए कि मैंने इबादत नहीं की मगर जब तक कि जो है मैंने अल्लाह को नहीं देख लिया। और एक अच्छी रिवायत और एक कि हज़रत और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से के क़िस्से से ज़ाहिदी में लाया है कि अब्दुल्ला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की जो है फ़र्जंद है, हज़रत अब्दुल्ला तवाफ गाह में ठहरे हुए थे, जो है काबे के सामने जो है ठहरे हुए हैं ठहरे, और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन पर से गुजरे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन पर से गुजर और सलाम किया, अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के फर्जंद जो है अब्दुल्ला के सामने जो है ठहरे हुए हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का गुजर हुआ खलीफे हुआ में सलाम किया, हज़रत उस्मान ने जो है हज़रत अब्दुल्ला को हज़रत उमर फारूक के बेटे को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, उस्मान रज़ी नाराज़ हुए। आगे लिखा है उस्मान गए और उमर के सामने शिकायत, साफ साफ लोग थे साफ साफ बातें थी, गए जो है और जो है वालिद के सामने शिकायत है और कहा कि आपके फर्जंद अब्दुल्ला को मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने फर्जंद पर इताब किया और कहा कि लड़के तूने उस्मान की फजीलत ना पहचानी और उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने उज़र ख्वाही की, माफ़ी चाही और कहा कि हम उस वक्त खुदा को देख रहे थे और हम बाहम एक दूसरे को देख रहे थे, मैं खुदा को देख रहा था और खुदा मुझको देख रहा था और मैं उस वक्त अपनी खुदी से और उनके सलाम से बेखबर था, मैं अपनी खुदी से और उनके सलाम से बेखबर था। डायरेक्ट महूत है अल्लाह के दीदार में, उस्म के खास सहाबा जो है अल्लाह के दीदार में महूत है, ये जो है साफ साफ जो है रिवायतें हमें मिलती हैं, वही जो दीदार जो खास खास सहाबा के वास्ते वहाँ पे ऊपर जो खोला गया था इमाम नाम मेहदी मौद सलाम ने आम खास खोल दिया, यहाँ पे वहाँ पे जो खास खास लोगों को जो दीदार हुआ था खास खास लोगों से जो रिवायतें मिलती हैं यहाँ पे आम खास आओ इमाम नाम मेहदी मौद सलाम को जो है कबूल करो और अल्लाह की दर से मुशरफ हो जाओ। मैं इस्लाम के पास यही था खुदायरा दीदनी है बायत दी, खुदा तला को देखना है देखना ही चाहिए, याद रखिए हमारा जो महदबियत है जो तमाम का तमाम जो पूरा लुबिलवाब है वो अल्लाह का दीदार है, मेहदी मौद का जो मकसद जो मिशन वो सिर्फ अल्लाह का दीदार है, तो इस्लाम का आना सिर्फ और सिर्फ उसी वास्ते हुआ, तो अपने वास्ते जो है वहाँ पे आपका मकसद वो जो ना है वहाँ पे जो है सोचने विचारने की कोई बात ही नहीं हमारे पास, हमारी ज़िंदगी का पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह का दीदार है, उसी के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि इस्लाम के पास सहाबाए मेहदी के पास यही चर्चा रहता था दिन रात, जो दावत होती थी वो अल्लाह की मुलाकात के वास्ते दावत होती थी, जो भी दावत दी जा रही थी वहाँ पे जो वाज़ो बयान होता जो कुछ भी होता अल्लाह से मिलाने के वास्ते जो है बातें होती थी, और ये लोग जो है जो दुनिया परस्त थे ये लोग जो है अल्लाह के दीदार के जो है मुनकरीन थे, क्योंकि सारे के सारे जो है दुनिया परस्त थे, इसीलिए जो है अब दीदार खुदा की जो है तायद में जो रिवायतें आई हैं बंदगी में लिखी है वो यहाँ पर लिखी हैं। दोबारा जो है रिवायत पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी के किस्से से ज़ाहिदी में लाया है कि अब्दुल्ला तवाफगाह में ठहरे हुए थे और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन पर से गुजरे और सलाम किया, अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया। उस्मान गए और उमर रज़ी अल्लाह तआला के सामने शिकायत की और कहा कि आपके फर्जंद अब्दुल्ला को मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने फर्जंद पर इताब किया और कहा कि लड़के तूने उस्मान की फजीलत ना पहचानी और उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। अब्दुल्ला ने उज़्र ख्वाही की और कहा कि हम उस वक्त खुदा को देख रहे थे और हम बाहम में एक दूसरे को देख रहे थे, मैं खुदा को देख रहा था और खुदा मुझको देख रहा था और मैं उस वक्त अपनी खुदी से और उनके सलाम से बेखबर था। और अक्सर कुरान आगे बंदी के बयान कर रहे हैं कि और अक्सर कुरान की आयतें भी इसी माने पर दलालत करती हैं और इसी के मुआफिक हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह इराक की जो आयत मुसलसल का जो हिस्सा है कि फलम्मा तजल्ला रब्बहू, यानी फिर जब तजल्ली की उसके परवरदिगार ने पहाड़ पर कर दिया उसको रेजा रेजा और गिर पड़ा मूसा बेहोश। और ये आयत अल्लाह ताला के दीदार के बारे में नस है और इन्हीं वजू से दीदार के मुनकरों की जहालत जाहिर हो जाती है। भैया फरमाने की यह आयत जो है ऐन सबूत है दीदार के वास्ते, या यहाँ पे जो है मुनकरीन जो है दीदार के जो है इनकार में लेके आते हैं। आगे लिखिए इसकी तफसील, और इन्हीं वजू से दीदार के मुनकरों की जहालत यहाँ पे जो है जाहिर हो जाती है। और इमाम जाहिद ने अपनी तफसीर में लाया है इस आयत की तफसीर में कि बाज़ उलमा का ये कहना है कि दुनिया में अल्लाह का दीदार मुहालात से है, यानी जो है मुहाल है, नामुमकिनात में से है, जायदाद से नहीं है। उनका ये कहना, ये दूसरे मुफसिर का जो बंदगी मैसलम के पहले के हैं उनका कौल लिख रहे हैं बंदगी में, कि उनका ये कहना खता है इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में दीदार का सवाल किया। अगर दुनिया में दीदार होना मुहालात से होता, यानी जो है जायज़ ना होता, तो ये मानना पड़ेगा कि मूसा ने कलीमुल्ला, हबीबुल्ला और अब्दुल्ला होने के बावजूद अल्लाह ताला से अम्रे महाल का सवाल किया, यानी जो चीज़ नामुमकिन है उसका मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है सवाल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर होने के बावजूद जो है अल्लाह ताला से के कलीमुल्ला होने के बावजूद जो है एक चीज़ जो नामुमकिन है उसका आपने सवाल किया, ये मानना पड़ेगा अगर जो है इस आयत से आप जो है इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आगे मुफस्सिर लिख रहे हैं और हम मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ऐसी बदगुमानी नहीं करते और हम किसी नबी के मुतालिक ऐसा गुमान और ना हम किसी नबी के मुतालिक ऐसा गुमान करते। और बाज़ उलमा ने हम साफ आपके सामने ये बात आई तो जो है इसी तरह से जो है रख सकते हैं आसानी के साथ कि जो है अम्रे महाल का सवाल, यानी जो चीज़ मुहाल है नामुमकिन है, तो उसका सवाल जो है कोई पैगंबर नहीं कर सकता। जब पैगंबर ने जो है सवाल किया तो वो मुहाल नहीं है, साफ सब बंदगी यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका हवाला भी उसी तफसीर से दिया जा रहा, क्योंकि हम जो है लिख रहे हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ऐसी बदगुमानी नहीं करते, एक पैगंबर होते हुए वो शान रखते हुए एक चीज़ जो मुहाल अल्लाह ने कर दी है उसका जो उन्होंने सवाल किया, ये पैगंबर की जो है शान शान के खिलाफ है, वो चीज़ जायज़ थी इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है सवाल किया। और आगे लिखा है और बाज़ उलमा ने कुल्लू मन अलैहा पान, यानी जो चीज़ ज़मीन पे है तमाम फना होने वाली है, कि आयत से इस्तदलाल करते हुए कहा कि दारे दुनिया में दीदार जायज़ नहीं, ये भी उनकी गलती है। मैंने लिख रहे हैं कि ये भी उनकी गलती, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मौत का यकीन था, मूसा को मालूम था, उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने दारे दुनिया में दीदार का सवाल किया, मतलब दुनिया में होता हो के मालूम था, तो फिर दुनिया में दीदार जायज़ हुआ। आगे बंदगी लिख रहे हैं साहिब मदारिक ने तफसीर मदारिक मुफसिर ने अपनी तफसीर में लन तरानी की आयत के बयान में लाया है, इसके माने ये हैं, इन्हें अल्लाह ने जब कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता लन तरानी, उसके आयत की तफसीर में साहिब मदारिक ने लिखा है इसमा लन तरानी की आयत के बयान में लाया है कि इसके मायने ये हैं कि मूसा तुम सवाल करके फ़ानी आँख से मुझे हरगिज़ ना देखोगी, बल्कि हमारे फजल व अता से तुम अपने चश्मे बाकी से हमको देख सकोगे, यानी जब तुम फना हो जाओगे तो तुम जो है बाकी वाली जो आँखें हैं जो फना नहीं होगी उससे जो है हमें देख सकोगे। हमारी दलील भी यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, जिंदगी में लिख रहे हैं कि हमारी दलील भी ये है, जब जो है हमारी आँखें फना हो जाती हैं मुकम्मल उसकी आँखें हो जाती हैं, क्योंकि आपको सही हदीस ही मिलेगा जहाँ पे हदीस कुर्सी में है, उसका मफ़हूम कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जब मेरा बंदा जो है नवाफी अदा करता है कसरत से, मतलब कसरत से अल्लाह की इबादत करता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करता है, उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी आँखें जो है अल्लाह की जो है आँखें हो गई, तो इन आँखों से अल्लाह का दीदार जायज़ है, मेरी आँखों से अल्लाह का दीदार जो है जायज़ नहीं है। तो वहाँ पे लंतरानी कहने की जो बात आई है बंदगी में जो लिख रहे हैं यहाँ पे वो यही साहिब तफसीर साहिब मदारिक के हवाले से, क्या है मूसा तुम सवाल करके फ़ानी आँख से मुझे हरगिज़ ना देखोगे, बल्कि हमारे फजल व अता से तुम अपने चश्मे बाकी से हमको देखोगे। हमारी दलील भी यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं हरगिज़ नहीं देखा जाऊँ, कि अलबत्ता जवाब दर की नफ़ी हो जाती है। अगर अल्लाह कह देता कि मैं नहीं देखा जाता तो तुम मुझे नहीं देख सकते, अल्लाह ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकती, मैं नहीं देखा जाता, अगर ये कह देता तो जो है वो दीदार की नफी हो जाती, यानी दीदार जो है इम्पॉसिबल इसमें हो जाता। आगे बंदगी में लिख रहे हैं कि अजीज जान के उलमा और मशायखीन भी दीदार के जायज होने की गवाही दे रहे हैं। ऊपर से अगर आप देखेंगे उनके बाद से कई औलियाल्लाह उलमा और मशायखीन जो है दीदार के जो है खायल हुए हैं, उसी के ऊपर जो है गुफ्तगु करते हुए आए हैं, उसी के ऊपर जो है दावा देते हुए, क्योंकि लेकिन जो है वो लोग फॉर्मली ऑथोराइज नहीं थे। फॉर्मली जो दीदार की दावा के ऑथोराइज थे वो मेहदी मौऊद इस्लाम की दावा, जो दरवाज़ा जो फॉर्मली जो खोला गया वो इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की है ज़ात है। ऊपर आप जितने भी औलिया इकराम देख लेंगे वो तमाम के तमाम जो है दीदार की जो है गुफ्तगु करेंगे, दीदार की जो है उसी तरफ जो है बात करेंगे, बल्कि जो उसके ऊपर जो है कई अखबार जो है आपको मिलेंगे भरे पड़े हैं किताबों से। ऐ अज़ीज़ जान के उलमा और मशायखीन भी दीदार के जायज़ होने की गवाही दे रहे हैं, और आ हज़रत सलम के बाज़ सहाबा भी आ हज़रत से दीदार के जवाज जो दाई दलील है की रिवायत कर रहे हैं। बस जो शख्स के दीदार से इनकार करेगा और कहेगा कि दुनिया में हरगिज़ दीदार जायज़ नहीं, तो उसका क्या हाल होगा और उसका क्या नाम रखेंगे और किस ज़ुमरे में उसका शुमार करेंगे? बिलज़रूर उसका शुमार उस ज़ुमरे में होगा जिनके अहवाल की खबर खुदा ताला ने अपने कलाम में दी है। चुनाचे सूर्य नाम की आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो लोग नुकसान में रहे जिन्होंने झूठ जाना अल्लाह की दीदार को, यहाँ तक कि जब एक दिन उन पर क़यामत आ पहुँचेगी तो चिल्ला उठेंगे कि हाय अफसोस हमारी उस कोताही पर जो हमने क़यामत के बारे में की। ये लोग जो है दुनिया में नुकसान, ये लोग नुकसान में रहेंगे, अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं जिन्होंने अल्लाह की दीदार की जो है इनकार किया है, जब तक उनके पर क़यामत आ जाएगी जब जो है वो लोग पछताएंगे। इसके अलावा कुरान में और बहुत सी आयतें हैं, लिख रहे हैं इसके अलावा कुरान में और बहुत सी आयतें हैं जो मुनकिरान दीदार को धमकी देने पर गवाही दे रही हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरे आमीन सजदे की आयत है सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी, इन्हें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अनकरीब हम उनको दिखलाएंगे अपनी निशानियाँ दुनिया के अतराफ़ में और उनको उनके अपने दरमियान में उनकी जो है अपने नफ्स में, यहाँ भी यहाँ तक कि उन पर खुल जाए कि ये बरहक है, क्या ये काफ़ी नहीं कि तेरा परवरदिगार हर चीज़ पर मुतला है। आगा हो कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं अपने परवरदिगार के दीदार से, आगा हो कि बेशक अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुए, यहाँ तक जो कुरान मजीद की आयत है। आगे बंदगी में लिख रहे हैं कि पस अज़ीज़ जान के जो शख्स दुनिया को अपना घर और अपनी पनाह की जगह बनाया हो और खुदा तआला की याद और उसकी मोहब्बत और मारिफत से मुँह फेर लिया हो, यानी जो शख्स जो है यहीं पे जीना चाहता, यहाँ से हटना नहीं चाहता, इसी में जो है दिल लगाया हुआ है, अल्लाह से जो है मिलने की कोई ख्वाहिश उसके दिल में जो है मौजूद नहीं है, उसके ताल्लुक से बंदे लिख रहे हैं कि पस अज़ीज़ जान के जो शख्स दुनिया को अपना घर और अपनी पनाहगाह की जगह बनाया हो और खुदा तआला की याद और उसकी मोहब्बत से मारिफत से मुँह फेर लिया हो और उसकी मालूमात की इंतहा इस दर्जे पर पहुँची हो कि उसके हर कौल फे वफेल का मकसद सिर्फ दुनिया हो, तो नाचार ऐसे ही शख्स के हक में अपने हबीब को खुदा तआला का फरमान होता है कि बस तू उसे मुंह फेर ले, सुनजन की आयत है, बस तू उसे मुंह फेर ले जो हमारे जिक्र से मुंह फेर लिया और ना तलब करे मगर दुनिया की ज़िंदगी, यही तक उनकी इल्म की रसाई है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसके आगे की तफसील है, इस्लाम की जो है सबूत में आ रही है तो टॉपिक जो है बदल रहा है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अभी नशिस्त में जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। आखिरी नशिस्त के अल्लाह ताला अभी इसमें जो है इस्लाम के मेहदी के सबूत में जो है चंद गुफ्तगू की गई है और असहाबे मेहदी की शान में कौम मेहदी की शान में जो हदीस है वज़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है वो जो है तफसील से अल्लाह ताला अभी इस्लाम की समझ ली जाएगी।
Thank you.